दिन भर 27 मार्च रविवार, मैं हूं संदीप सोनी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू, कांग्रेस नेता हरीश रावत।
एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले दिन से ही मेरे और मेरी सरकार की खून की प्यासी थी।
करेंगे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन और पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण। संडे दिन भर में मिलिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से।
हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज लेके निकले थे कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, इनसेंसिटिवनेस है टुवर्ड्स कॉमन पीपल, और वही लड़ाई सरकार में भी चल रही है।
G20 विश्व कप में मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए आज करो या मरो की स्थिति, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। उत्तराखंड में आज राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज सुबह इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। कल रात को उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई थी, जिसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई थी। इधर राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि मौजूदा बीजेपी सरकार धन बल से राज्य की राजनीति का अपहरण करने का प्रयास कर रही है। राज्य में कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के बाद मुश्किलों में घिरी हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित करना था। सीरियाई सरकारी सेना ने देश के प्राचीन पलमायरा शहर और इसके भग्नावशेषों पर कब्जा कर लिया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इस शहर पर पिछले साल मई में खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह ने कब्जा कर लिया था। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसके लिए सेना की तारीफ की है और कहा है कि यह सबूत है कि सीरिया की सेना और उसके समर्थक चरमपंथ के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीरियाई आर्मी के एक प्रवक्ता ने सरकार की इस जीत के बारे में जानकारी दी और कहा, सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े और असरदार सैन्य अभियानों के जरिए हमारी सेना नामी कमेटियों और सीरियाई और रूसी सरकार के हवाई हमलों की मदद से पलमायरा शहर में फिर से स्थिरता लाने में कामयाब हुई है। इस शहर पर पूरे तौर पर कब्जा कर लिया गया है, इसके और इसके आसपास के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है और इसमें इस्लामिक स्टेट के कई लड़ाकों की मौत हुई है। ये थे सीरियाई आर्मी के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ग्रीस और मैसेडोनिया की सीमा पर सैकड़ों प्रवासी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लिए सीमा खोलने की मांग कर रहे हैं। ग्रीस पुलिस के खास दंगारोधी टुकड़ी सीमा और उन प्रदर्शनकारियों के बीच खड़ी है जो उत्तरी यूरोप की ओर जाना चाहते हैं। इस तरह की अफवाहें उड़ी थी कि 2 सप्ताह पहले अधिकारियों के मैसेडोनिया सीमा बंद करने के बाद प्रवासी जोर जबरदस्ती इसे खोल सकते हैं, जिसके बाद ये प्रदर्शन हुए हैं। शनिवार को ग्रीस के अधिकारियों ने इडोमिनी और स्क्वाली में रह रहे कुछ प्रवासियों को देश में अन्य शिविरों में भेजा था, लेकिन इनमें से कई अब लौट आए हैं। भारत के पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले की जांच करने के लिए पाकिस्तानी जांच दल आज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। भारत ने इस साल जनवरी में हुए इस हमले के लिए इस्लामी चरमपंथी समूह जैश ए मोहम्मद के चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया था। हमले में कुल 7 सैनिक मारे गए थे। माना जा रहा है कि ऐसा कम ही देखा गया है जब पाकिस्तान और भारत की सरकारें इस तरह की साझा जाँच में मिलकर काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारक अल जजीरा करीब 500 नौकरियों में कटौती करने जा रहा है। इनमें से अधिकतर नौकरियां इसके मुख्यालय कतर में हैं। कंपनी का कहना है कि नौकरियों की कुल संख्या में लगभग 10% की कटौती का फैसला कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने की शुरुआत के बाद लिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी से दिन की तीसरी सभा। दिन भर में सभी श्रोताओं का अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं लाइव। T20 विश्व कप में मोहाली में अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। दिन की बड़ी खबर पर आने से पहले एक झलक इस मैच की लेते चलें आदेश कुमार गुप्त से।
जी संदीप, देखिए इस मुकाबले का बड़ा ही महत्व है क्योंकि जो टीम जीतेगी वो सीधे सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। और जैसा कि आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो भारत के आशीष नेहरा ने गेंदबाजी की शुरुआत की। उनकी पहली ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने स्क्वायर लेग पर चौका लगाया और उसके बाद लगातार 5 गेंदों पर बीट किया आशीष नेहरा ने उस्मान ख्वाजा को। पिच में काफ़ी उछाल है और ऐसा लगता है कि इस पर काफ़ी बड़ा स्कोर बनने की संभावना है।
कितना स्कोर बनता है?
4 रन बिना किसी नुकसान।
बिल्कुल, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दिन की बड़ी सियासी खबर से। 19 मार्च से शुरू हुई कहानी 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन पर आकर खत्म होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जहां 19 मार्च को वित्त विधेयक पर मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने ही 9 विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद विद्रोही विधायक कभी गुड़गांव तो कभी जयपुर में नजर आते हैं। तब से लेकर अब तक भाजपा और कांग्रेस के नेता कभी राष्ट्रपति भवन की ओर दौड़ते नजर आए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा, जो आज तब अपने चरम पर पहुंच गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर दस्तखत कर दिए। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के संवैधानिक और सियासी पहलुओं को समझें, उससे पहले आइए सुनते हैं देहरादून से शिव जोशी की ये रिपोर्ट।
अपने समर्थकों की जोरदार नारेबाजी के बीच हरीश रावत सरकारी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे। जिंदाबाद के नारों के बीच हरीश रावत ने आरोप लगाया कि पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बाकायदा राज्यपाल को धमकाया गया। बकौल रावत, बीजेपी उनके खून की प्यासी थी।
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से राज्यपाल को धमकाया गया। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से राष्ट्रपति शासन की धमकियां जारी की, तो इसलिए एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है, भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पहले दिन से ही मेरे और मेरी सरकार के खून की प्यासी थी।
बहुमत परीक्षण से एक दिन पहले ही केंद्र के इस फैसले से हैरान हरीश रावत ने कांग्रेस के बागी नेताओं को भी निशाने पर लिया। उन्हें बीजेपी का पिछलग्गू बोलते हुए हरीश ने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने बीजेपी का साथ देकर न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि जनता और अपने मूल्यों के साथ भी धोखा किया है।
राज्य अब जन सेवा से, पॉलिसी एंड प्लानिंग से, नीति और कार्यक्रमों से चलेगा या ये राज्य का भाग्य का निर्धारण स्टिंग और डिफेक्शन करेंगे। मैं इस सवाल को सारे उत्तराखंड के लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के लोग, मैं बहुत आभारी हूँ अपनी पार्टी का, उसने मुझे ये अवसर दिया है, मैं इसका भरपूर उपयोग कर रहा हूँ अपने राज्य की जनता की सेवा के लिए।
2 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले हरीश रावत ने कहा कि वो जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी के इरादों और साजिशों को बेनकाब करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले चुनावों में उनकी पार्टी को ऐसा जनादेश मिलेगा कि राष्ट्रपति चुनाव जैसी नौबत ही ना आए। उधर बीजेपी से हाथ मिला चुके पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इशारा किया कि बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है।
मैं तो अपने साथियों के साथ निर्णय करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे अगर सरकार बनती है कोई तो ज्यादा अच्छा है जनहित में, लेकिन ये सब तो अभी कल्पना की बात है, ऐसा कोई वास्तविक स्थिति से अभी मैं अवगत भी नहीं हूँ। लेकिन जो पहला कदम ये जरूरी था कि हरीश रावत जो अपना बहुमत हार चुके थे वो अपने पद से हटाया जाए।
इस बीच विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल ने सुबह बागियों के वकीलों की दलीलें सुनी और दिन में बागियों की सदस्यता निरस्त करने का फैसला कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय आ चुका था। ऐसे में स्पीकर के फैसले की संवैधानिकता और बागियों की सदस्यता को लेकर एक बार फिर असमंजस बन गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की खींचतान ने इस छोटे से राज्य को एक निरंतर राजनीतिक अस्थिरता में धकेल दिया है, जिसका असर विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। करीब 16 साल पुराने राज्य में 8-8 बार मुख्यमंत्री पद में बदलाव हो चुका है और अब 9वें की बारी है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
2 सवाल जहन में आ रहे हैं मेरे। पहला ये कि उत्तराखंड की सियासी उठापटक से कांग्रेस के विद्रोही विधायकों को क्या हासिल हुआ, और दूसरा ये कि सत्ता की बागडोर कांग्रेस के हाथ से छूटने के बाद उत्तराखंड के सिंहासन पर बैठने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारी की है। देहरादून से शिव जोशी हमारे साथ होंगे, इस उठापटक के सियासी मायने भी समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस से, लेकिन पहले संविधान की नज़र से इस घटनाक्रम को समझते हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च यानी कल तक का समय दिया गया था सदन में बहुमत साबित करने के लिए, तो फिर कल तक इंतजार नहीं करके आज ही राष्ट्रपति शासन लगा देना क्या संविधान के हिसाब से सही है यह फैसला? संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप।
संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी समय राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है अगर वो ये संतुष्ट हो जाए राज्यपाल की रिपोर्ट पर अथवा अन्यथा कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है या नहीं चल सकता है। तो इसलिए जहाँ तक विधि और संविधान का सवाल है, राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम किया है और वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें विचार विमर्श हुआ और उन्होंने राष्ट्रपति से सिफारिश की और राष्ट्रपति ने उसको माना। लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो वैल्यू जजमेंट की बात हो सकती है, उस पर विचार विभिन्न हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प होता है।
सुभाष जी, ये भी बताएं कि उत्तराखंड की विधानसभा को भंग नहीं किया गया है, उसे केवल निलंबित किया गया है। इस निलंबित किया गया है, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि अभी भी सरकार बनाने का रास्ता खुला हुआ है। अगर राज्यपाल को किसी भी समय ये विश्वास हो जाए कि वैकल्पिक सरकार बन सकती है तो वो राष्ट्रपति शासन हटाकर वैकल्पिक सरकार बनाई जा सकती है, और वो विश्वास होने के लिए ऐसा कोई दल या ऐसा कोई नेता सामने आना चाहिए जिसके बारे में राज्यपाल ये आश्वस्त हो कि उसे सदन के बहुमत का समर्थन मिलने की आशा की जा सकती है।
सुभाष जी, ये भी बताएं कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में कांग्रेस यदि उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करती है तो इस तरह के मामलों में अदालत क्या देखती है? किस बुनियाद पर अदालत इस तरह के फैसलों को पलटती है या यथावत रखती है?
चुनौती तो दी जा सकती है, अब ये इस पर निर्भर होगा कि उनके पास क्या तथ्य हैं। सुप्रीम कोर्ट यही देखती है कि राष्ट्रपति के सामने सारे तथ्य रखे गए या नहीं रखे गए। अगर ये साबित हो कि राष्ट्रपति के सामने सारे तथ्य नहीं रखे गए तब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है।
ये थे संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप, और अब देखना होगा कि कांग्रेस उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या तथ्य रखती है। बहरहाल, इस समय देहरादून से हमारे सहयोगी शिव जोशी टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे संपर्क में हैं। शिव जोशी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं कि उत्तराखंड की इस पूरी सियासी उठापटक से, जिसकी नींव में कांग्रेस के विद्रोही विधायक थे, उन विद्रोही विधायकों को क्या हासिल हुआ? कहाँ हैं आप अब वो?
देखिए संदीप, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन बागियों को क्या हासिल हुआ होगा। तो जो सबसे पहली बात है इनको हासिल होने की, वो तो ये है कि एक परम संतोष इस बात का कि जो इनके परम विरोधी थे हरीश रावत, वो अब सत्ता में नहीं है, उनकी सरकार गिर गई है। सबसे पहला सवाल प्रतिष्ठा का था, अहम का था और वर्चस्व का था। तो इस लड़ाई में तो हरीश रावत इनके आगे मात खा गए हैं। तो सबसे पहला तो ये मानना चाहिए कि ये इनको ये एक संतोष इस बात का हासिल हुआ कि ये अपनी उस कथित तौर पर उस लड़ाई में ये सफल रहे हैं कि इन्होंने हरीश रावत को कुर्सी से हटा दिया है। ये लोग यही चाहते थे। और दूसरी बात ये कि बार बार जो लग रहा था कि हरीश रावत एक तरफा फैसला ले रहे हैं और हरीश रावत जिसे कहते हैं कि हर चीज के बारे में बिल्कुल एकदम बहुत ही आरोप उन पर ही लग रहा था कि बहुत ही अधिनायकवादी ढंग से काम कर रहे हैं, तो ये सब आरोपों को लेकर ये जो बागी बने थे और जो असंतोष था उसको लेकर इन लोगों का ये कहना था कि अब वो उस सब पर विराम लग गया है, वो सब हट गया है। दूसरी बात जो एक अगर थोड़ा सा पीछे जाना होगा संदीप, विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री बने थे तो हरीश रावत उस समय एक दावेदार थे, लेकिन आलाकमान ने विजय बहुगुणा को भेजा था। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना 1.5-2 साल का समय गुजारा, और जब 2 साल पहले हरीश रावत आए तो विजय बहुगुणा को हटा के आए थे। तो विजय बहुगुणा एक तरह से इनके उस समय से प्रतिद्वंदी थे और विजय बहुगुणा चाहते थे कि आने वाले समय में वो इनको एक पटखनी दें, और वो मौका उनको आज हासिल हो गया। जी
जी, शिव जोशी, ये भी बताएं कि रात बाकी है अभी सुबह होने में, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी नजर आ रही है उत्तराखंड के सिंहासन पर आसीन होने के लिए?
देखिए संदीप, जहां तक बीजेपी की तैयारियों की बात है, एक तरह से ये उसके लिए चाहे भले ही समय कम है उसके पास, एक साल खमोबेश एक साल भी नहीं उससे भी कम समय है, लेकिन वो उस समय को भी भुला लेना चाहती है अपने पक्ष में, क्योंकि राज्यसभा की भी एक सीट का भी मामला है जो जुलाई में खाली हो रही है, वही उसका एक केंद्रीय लक्ष्य भी है। लिहाजा उसने अपनी जोड़तोड़ की तैयारियां और सरकार बनाने की तैयारियां अंदर खाने शुरू कर दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी वो यही कह रहे हैं कि अभी वो इस बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन जो अंदर खाने से सूत्रों से हमें जो बात पता चली है वो ये है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है और वो सही समय आने पर अपना बहुमत का दावा पेश करेगी। और जो विधानसभा का गणित है संदीप, वो अब अगर 9 बागी विधायकों, जैसे कि विधानसभा स्पीकर ने उनको सदस्यता उनके खारिज कर दी है, अगर उनकी सदस्यता खारिज हो जाती है उसके बाद भी अगर हम स्थिति देखें, अगर उस मामले में असमंजस दूर हो जाता है तो बीजेपी के पास बहुमत में सदन में बहुमत साबित करने का पूरा मौका होगा और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। और संदीप, अभी अभी कुछ देर पहले ही एक खबर जो सूत्रों के हवाले से पता चली है वो ये कि शायद भगत सिंह कोश्यारी अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, चाहे भले ही वो चंद दिनों के लिए हों।
जी, इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरी सियासी उठापटक पर आप अपनी नजर बनाए रखें। ये थे देहरादून से हमारे सहयोगी शिव जोशी, और अभी कई सवालों के जवाब जानना बाकी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, जिनका जवाब जानने के लिए, तलाशने के लिए, समझने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस से बात की, और पहला सवाल यही पूछा कि 28 मार्च तक बहुमत साबित करना था हरीश रावत सरकार को, तो ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या हो सकता था जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन आज ही लगाने की नौबत आ गई।
ये तो सर्वविदित है कि काफी प्रलोभन दिए जाते हैं लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने में। मेरे ख्याल से भाजपा को ये कुछ शंका थी कि हो सकता है कि हरीश रावत लास्ट मिनट पर कुछ अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर नहीं दे।
भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की मोदी सरकार पर, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगता रहा है कि मोदी सरकार ने पहले अरुणाचल प्रदेश में सियासी खेल खेला और अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड को निशाना बनाया। इस आरोप में कुछ तथ्य भी नजर आते हैं आपको?
निश्चित रूप से अरुणाचल और उत्तराखंड दोनों में एक ही तरह का पैटर्न है, एक ही तरह का एक रवैया बीजेपी ने अपनाया है। जो कांग्रेस के लोग हैं दूसरी तरफ, वहां से कुछ लोगों को तोड़ना, उनको ये आश्वासन देना कि उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा और फिर सरकार बनाना उनकी मदद से, क्योंकि बीजेपी की अपनी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से ट्रू एंड टेस्टेड मेथड जिसे कहते हैं वो इन लोगों को सूझ गया है।
उत्तराखंड के मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, हालांकि आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश के मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। उत्तराखंड में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से क्या कोई राहत मिल सकती है?
देखिए, वही रूलिंग जो अरुणाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वही रूलिंग मेरे ख्याल से उत्तराखंड में भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये जानने की कोशिश की कि गवर्नर ने किस तरह से अपने विवेक को इस्तेमाल किया था।
वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडणीस इस खबर पर और इसके विश्लेषण पर नजर बनाए रखेंगे, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रविवार 27 मार्च का दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। वक्त हुआ है 7:48। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत के विरुद्ध, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं आदेश कुमार गुप्त
जी। देखिए संदीप, मोहाली में भारत का हाल काफी बुरा है। हालांकि हवा में इस बीच गेंद जरूर उछली लेकिन फील्डर पीछे रहे, कोई विकेट नहीं गिरा है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 54 रन है। उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी कर रहे हैं 26 रन बनाकर, आरोन फिंच 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और रनों की रफ्तार किस गति से बढ़ रही है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 31 रन था, लेकिन जब आर अश्विन ने चौथा ओवर समाप्त किया तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रन था। 2 छक्के आरोन फिंच ने उनकी गेंदों पर लगाए, और बुमराह जिन्होंने आज भारत की ओर से दूसरा ओवर किया, उस्मान ख्वाजा ने उसमें 4 चौके लगाए। तो जिस रफ्तार से ऑस्ट्रेलिया बढ़ रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि 180 से 200 रन के बीच कम से कम लक्ष्य भारत को मिलने वाला है।
देखते हैं 180 का लक्ष्य मिलता है या 200 रन का। और अब वक्त हो चला है संडे दिन भर का। संडे दिन भर में मिलिए आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से।
मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता, स्वागत है आपका बीबीसी के इस मुख्यालय में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी पार्टी काफ़ी नई है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आपकी पार्टी का सिलसिला शुरू हुआ था। वो जो एक असल लड़ाई आप लोगों ने शुरू की थी उस वक्त, क्या याद है आपको और उस दिशा में क्या प्रगति हो रही है?
वो लड़ाई अभी चल रही है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ लेके निकले थे कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, इनसेंसिटिवनेस है टुवर्ड्स कॉमन पीपल, और वही लड़ाई सरकार में भी चल रही है।
तो आप सरकार में रहते हुए भी आपको लग रहा है कि अभी उसके भीतर भी
करनी पड़ती है? बिकॉज हमने एक दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को पकड़ा, वो रिश्वत ले रहा था, तो जब वो मामला कोर्ट में गया तो पूरी की पूरी भारत सरकार, ASGs, इतने हाई प्रोफाइल लोग दिल्ली पुलिस के रिश्वत लेते हुए एक सिपाही को बचाने के लिए वहाँ कोर्ट में आ गए। तो वो लड़ाई चल रही है इसीलिए।
तो ये लड़ाई तो इस तरह से फिर चलती ही रहेगी। आप अब सरकार में आ गए हैं, अब सरकार के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है ना?
नहीं, दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार के जितने विभाग हैं वहाँ टॉप लेवल पे करप्शन नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ कि अगर कहीं से कोई केस आता भी है, जैसे इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक मिनिस्टर ने रिश्वत ली या उस पर रिश्वत लेने के आरोप लगे, उसका एक फैक्ट सामने आया, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको निकाल दिया गया। तो टॉप लेवल से करप्शन जीरो है। नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत कोई करने की हिम्मत करता है, जब पकड़ा जाता है तो फिर उससे संदेश जाता है कि नहीं लेना चाहिए, डर पैदा होता है। पर उसके अलावा दिल्ली में DDA है, दिल्ली पुलिस है, वहाँ भी तो रिश्वत है। हमारा काम है दिल्ली के लोगों को रिश्वत से निजात दिलाना। हम ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते, नहीं जी दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है साहब, DDA हमारे पास नहीं है, वहाँ तो रिश्वत चलेगी, वहाँ भी होगी तो हम लड़ेंगे।
लेकिन जो जनरल जो भारत में एक तस्वीर उभरी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी, यहाँ लंदन तक में हम लोगों ने उसकी जो लहर निकली थी वहाँ से उसको महसूस किया था, वो जो देश में चरित्र बदलने की एक कोशिश आप लोगों ने शुरू की थी, वो लड़ाई कहाँ है?
नहीं देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में बात करना ऑब्सलीट काम माना जाता था। देशभक्ति की बात करना, तिरंगा लेके निकलना, ये सब ऐसा लगता था जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त का काम है। लेकिन अब हर रोज़ बात हो रही है।
कहाँ हो रही है? मैं तो वही कह रहा हूँ, जब आप लोग लड़ाई करने आए थे उस वक्त आप लोगों ने दनादन एक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नितिन गडकरी, मुकेश अंबानी और तमाम तरह के लोगों के खिलाफ होते थे और लोग इंतजार करते थे कि अब उसकी बारी आएगी। अब तो वो सब बंद हो गया।
हमारी तो एक तिहाई सरकार है, छोटी सी सरकार है दिल्ली में, उसमें हम काम कर रहे हैं और उसमें करप्शन रोका भी है।
नहीं, ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी होता है कि एक लगा था ऐसा, जब आप लोग राजघाट पर तिरंगा लेकर अन्ना के साथ आंदोलन करते थे तो लगा था कि अब सारी तस्वीर बदल जाएगी राजनीति की। उसके बाद सबने देखा सरकार बनने के बाद आपकी पार्टी के भीतर भी किस तरह के विरोध हुए, विशेष रूप से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन लोगों के साथ। उससे जो बाहर जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उनका थोड़ा सा शक उनके मन में डाल गया कि ये भी वही पार्टी है जो सत्ता लेगी और फिर बाकी पार्टी की तरह हो जाएगी।
देश के लोगों ने हमें इसलिए नहीं चुना था कि आप 5 लोग जिंदगी भर एक शादी के गठबंधन में टूट बंध के रहना। देश के लोगों ने हमें इसलिए चुना था कि आप में से कोई भी भ्रष्टाचार करता हुआ पाया गया तो दिल टूट जाएगा। और आज भी
आप कह रहे हैं वो लोग भ्रष्टाचार करते हुए पाए?
नहीं, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल। तो जिस दिन हम बेईमानों के साथ खड़े पाए जाएंगे, जिस दिन ये लगेगा कि यार ये तो बेईमानी को अब सपोर्ट करने लगे, ये तो बचाने लगे, उस दिन लोगों का दिल टूटेगा।
ठीक है, अब चलिए दिल्ली सरकार की आपकी बात करते हैं। दिल्ली में दूसरी पारी आप लोग खेल रहे हैं 49 दिन, और उसके बाद फिर अभी एक साल से ऊपर हो रहा है, 1 साल 1 महीना। तो वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई थी दिल्ली के बारे में, भ्रष्टाचार ठीक है आपने रोक दिया, उसके अलावा जो दिल्ली बिल्कुल सेफ हो जाएगी, वाईफाई फ्री मिलेगा,
इस पर भी चल रहा है काम? देखिए, मतलब जो चीज़ 2-3 साल में होगी वो 2-3 साल में ही होगी, पूर्व एकदम ओवरनाइट नहीं हो सकती। वाईफाई पे काम चल रहा है, पूरे शहर में CCTV लगाने पे काम चल रहा है, बाकायदा PWD में पहली बार, मतलब ये बहुत नीटिग्रिटी की बात हो सकती है, मानी जा सकती है, लेकिन किसी देश में किसी भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या CPWD में CCTV की यूनिट नहीं है। कौन CCTV लगाएगा कहीं कोई क्लैरिटी नहीं। हमने बाकायदा CCTV की एक यूनिट बनाई है, सारी रिसर्च करके उस पर अब CCTV लगाने का काम शुरू हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, इन सबसे बढ़ेगा। ओवरऑल जितने हमने 70 मैनिफेस्टो की बात करी थी, 70-point manifesto की, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों पर काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। 24-48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे हो गए हैं। आज दिल्ली में करीब 9 लाख परिवारों को पीने का पानी मुफ्त मिल रहा है, 9 लाख परिवार उसका। अभी अभी 11 लाख परिवारों को जो उनके आउटस्टैंडिंग बिल्स थे वो क्लियर किए हैं, तो लोगों ने बिल देने शुरू कर दिए। बाकी सारी चीज़ों पे भी, स्कूल पे हमने कहा था 8,000 कमरे, इसमें 25 स्कूल बनके तैयार हो गए हैं, 8,000 कमरे नए बन रहे हैं, 200 स्कूल के बराबर का, तो सारी चीज़ों पे काम तेज़ी से चल रहा है।
आपकी पार्टी में अधिकतर लोग जो हैं वो सब सोशल मीडिया वगैरह वाले काफ़ी लोग रहते हैं और उसने आपको बनाया है पार्टी को, उस युवा वर्ग को आपके जो 70 पॉइंट्स हैं उनमें से वो दिखाई देगा, फ्री वाईफाई, वो लंदन जैसी जगह पे तो फ्री है नहीं, तो कुछ स्टडी वगैरह किया था कि संभव है? वो
स्टडी करके किया था और उसकी फिजिबल, अब उसके कई मॉडल्स हैं, सरकार कितना इन्वेस्ट करे, मार्केट कितना इन्वेस्ट करे, किस तरह से होगा, उसमें फिजिबिलिटी स्टडीज़ की गई हैं और जो साइंटिफिक तरीके से की गई हैं।
उसमें बताया गया कि कितने समय में ये पूरा हो पाएगा?
देखिए,
उसने तो जाके वोट दे दिया आपको उस नाम पे कि हमको फ्री वाईफाई।
और उसने ये नहीं सोचा था कि जिस दिन शपथ लेंगे उससे 24 घंटे बाद आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछा जाएगा, हाँ भाई 24 घंटे में वाईफाई कितना लगा?
अब तो एक साल हो गया।
देखिए, वाईफाई जैसी चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं और पूरे शहर में सीसीटीवी लगाना, ये सब बड़ी चीज़ें हैं, इनके लिए समय लगता है।
ठीक है, अब कोई एक आइडिया उभरता हुआ आ रहा है कि चलिए अभी एक साल हो गया, चार साल बाद जब चुनाव का समय आएगा उस समय तक
ये शुरू हो जाएगा, इस साल कुछ हिस्सों में आपको फ्री वाईफाई मिलने लगेगा।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या काम हो रहा है? दिल्ली जैसी घटना होती है 16 दिसंबर, उसके बाद से काफ़ी विदेशों में लोग उसको काफ़ी चिंता रहती है।
दिल्ली में महिलाएं वास्तव में असुरक्षित हैं और कई स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, इसमें कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा सीसीटीवी कोने पे, लुक एंड एवरी लुक एंड कॉर्नर पे अगर सीसीटीवी लग जाए तो कम से कम जो कोई गलत नीयत वाले आदमी हैं उनके मन में डर तो रहेगा। फिर जो सिस्टम्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या एन नंबर ऑफ कोर्ट्स, ताकि जल्दी से सुलझाए जा सकें मसले, उसके लिए भी हम मनी पंपिंग कर रहे हैं।
जो आम आदमी है उसके हिसाब से फिर आप जो कह रहे हैं वो बातें ऐसी लग रही हैं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें कोई विजिबल गोल दिखाई नहीं दे रहा है।
विजिबल गोल तो इसी से दिखाई देगा पूर्व, कि जिस दिन दिल्ली में बलात्कार, छेड़छाड़, ये सब घटनाएं कम होने लगें और जो ऐसा कर रहे हैं उनके मन में डर पैदा हो। अब वो ना सीसीटीवी की संख्या से होगा, ना नंबर ऑफ कोर्ट्स के गिने जाने से होगा, वो उससे होगा। और ये एक प्रोसेस है, जब ये सब मेजर्स हो रहे हैं होंगे, इनके असर दिखने लगेंगे, जिस दिन दिखने लगेगा कि ये कम हुआ उस दिन हमको भी लगेगा सफल हुआ, नहीं तो लगेगा कुछ और करने की जरूरत है, पर करना है।
तो क्यों नहीं, आप लोग जो इतना पैसा आपका कैंपेनिंग का मिला हुआ है उसको लेकर बहुत सवाल उठता है कि कितना 500 करोड़ से ऊपर का पैसा है, आप भी सुनाई काफी देते हैं, कोई भी एफएम सही में ऊब जाते हैं लोग कि गोल्ड एफएम सुन रहे हैं या फिर मनीष सिद्धिया का चैनल सुन रहे हैं,
थोड़ा एफएम कम
नहीं, तो वो जो पैसा है तो क्यों नहीं आप महिलाओं के काम में लगा रहे हैं?
प्रचार का पैसा अलग है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के इश्यूज, पैसे की कमी थोड़ी है,
ये सही जगह पे खर्च करिए ना उसको, प्रचार को लेकर इतना इतनी क्या जरूरत है?
प्रचार भी जरूरी है, अगर सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले रही है तो उसका प्रचार भी जरूरी, लोगों तक पहुंचेगा कैसे?
तो लोगों तक लेकिन उल्टा भी पहुंच रहा है ना, आप मुझे बताइए ना कि जिसकी 10,000, 15,000, 30,000 तनख्वाह है, उसकी बिजली बिल 5,000, 6,000 का है, उसको बोले कि 60 करोड़ रुपया जो है प्रचार पे खर्चा हो गया, कैसे कन्विंस होगा वो?
आप इसको प्रचार कह के बाद नेगेटिव कर देते हो, ये सूचना है, अगर लोग सूचित नहीं होंगे तो उनको कोई भी भरमाएगा।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी अपूर्व कृष्ण। और अब एक बार फिर बात क्रिकेट की, रुख मोहाली का, आदेश कुमार गुप्त खबर पल पल बदलते मैच के रुख पर नजर बनाए हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश जी।
जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर फिलहाल छठे ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर। एरोन फिंच बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं डेविड वार्नर 2 रन बनाकर। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ये फैसला अभी तक काफ़ी हद तक सही होता नज़र आ रहा है। और इससे पहले संदीप की हम वापस आएँ इसी मैच पर, अपने सुनने वालों को बता दें कि अफगानिस्तान ने नागपुर में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज़ को हैरतअंगेज रूप से 6 रन से मात दी। आज अफगानिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 123 रन बनाए, जिसके बाद वेस्टइंडीज़ की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। हालांकि इस हार से वेस्टइंडीज़ की
सेहत पर,
स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने ग्रुप पर टॉप, ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए जगह बनाई। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मोहाली में खेले जा रहे मैच की बात की जाए तो अभी छठे ओवर के बाद अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है और महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद दी विराट कोहली को, ये एक बड़ी
कम देखने में आता है,
अजीब सा उनका निर्णय नज़र आता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी गट फीलिंग के लिए जाने जाते हैं, उनका दिल जो कहता है वही करते हैं। लेकिन आज का मुकाबला तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। लेकिन विराट कोहली ने केवल गेंद पकड़ी थी, अब उन्होंने थमा दी है रविंद्र जडेजा को, जो एक बार तो हमारे भी दिल की धड़कने थम गई थी और हम भी सोच रहे थे कि कैसा निर्णय। लेकिन रविंद्र जडेजा फिलहाल 7वां ओवर लेकर आते हुए, और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड में आज राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। कल रात उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक हुई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई थी।
सीरियाई सरकारी सेना ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्राचीन पलमायरा शहर और इसके भग्नावशेषों पर कब्जा कर लिया है। ग्रीस और मैसेडोनिया की सीमा पर सैकड़ों प्रवासी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके लिए सीमा खोलने की मांग कर रहे हैं। भारत के पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले की जांच करने के लिए पाकिस्तानी जांच दल आज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारक अल जजीरा करीब 500 नौकरियों की कटौती करने जा रहा है। इनमें से अधिकतर नौकरियां इसके मुख्यालय कतर में हैं। बेल्जियम के ब्रसेल्स में प्लांस टेला बूस में खुद को फासिस्ट कहने वाले एक समूह के सदस्य जबरन घुस गए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मदद कर रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक डेढ़ घंटे के बाद घटना चक्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।